बाई लो सेल लोअर जतिन कुछ भी, मतलब ऐसा क्या यार, कब होता है ये? कोई पैसा बनाने का तरीका है यहाँ पे? मुझे पता है आप में से बहुत लोग यही कह रहे होंगे, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बुल मार्केट की दिक्कत है बहुत बड़ी। आप यहाँ पे सस्ता खरीदते हो और प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, बीच में कहीं बेच देते हो, फिर आपको लगता है यार मैं तो बहुत ही सस्ता बेच दिया। तो ऐसा तो नहीं होता कि बाय लोअर सेल लोअर, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा यहाँ पे कि आपने बाय लेट से यहाँ पे किया और आप उसको यहाँ बेच रहे हो, आप बेचते हो उसको यहाँ पे हो, फिर वो चला जाता है स्क्रीन के भी बाहर। तो ये बहुत बार होता है बुल मार्केट के अंदर। मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि ऐसा मत कर लेना गलती से भी, कि आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इसके अंदर घुस जाओ और फिर उसको और भी जल्दी बेच दो, क्योंकि बुल मार्केट है बहुत लंबा जाएगी। यहाँ पे आप महंगा खरीद लोगे, आपको माफी मिल जाएगी, बट अगर आपने ऐसा सस्ता बेच दिया ना, वापस कभी नहीं खरीद पाओगे उस चीज को। हेलो गाइस, माय नेम इज जतिन अग्रवाल, वेलकम बैक टू द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इस बड़े पेरिल की जो बुल मार्केट के अंदर होता ही होता है, और इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरी है वो ये है कि बुल मार्केट्स लंबी चलती हैं, बुल मार्केट्स छोटी नहीं होती। तो अगर बुल मार्केट्स लंबी चलती हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना जरूरी है कि मोस्टली आपको स्टॉक्स अपने होल्ड करने चाहिए, स्पेशली वो स्टॉक्स जो आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, जो कंपाउंड कर रहे हैं। एंड बुल मार्केट्स आपकी एवरेज पे चलेंगी 7-8 ईयर्स के लिए, मे बी 10 ईयर्स के लिए। एंड जो आपकी बेयर मार्केट होती है वो चलती है 1-1.5 साल के लिए। पिछली वाली चली थी जो स्टॉक मार्केट की बेयर मार्केट थी, जो करेक्शन थी, वो मार्च की 2020 में हुई थी, और उसके बाद हमने देखा एक बहुत शार्प रिबाउंड हुआ था उसके अंदर। एंड दैट इज डेफिनेटली ड्यू टू फेड प्रिंटिंग सो मच ऑफ मनी, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट बहुत एक्सपैंड कर ली, बहुत इन्फ्लेट कर ली, एंड एक बेसिकली बबल को हटाने के लिए या एक गड्ढे को भरने के लिए उन्होंने एक और बड़ा गड्ढा खोद के उससे मिट्टी डाली है इसके अंदर। तो आप मान लो एक छोटा सा पडल है आपका और एक बड़ा पडल हो गया है अब यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ से इन्होंने मिट्टी उठा उठा के इधर डाली है। तो ये चीज़ें आपको समझनी थोड़ी ज़रूरी है कि देवर ट्राइंग टू सेव दी US इकनॉमी एंड द ग्लोबल इकनॉमी, क्योंकि काफ़ी सारा डेट ग्लोबली US डॉलर के अंदर है, तो अपने आप को बचा रहे हैं तो ग्लोबल इकनॉमी भी बचा लेंगे कहीं ना कहीं। तो वॉट देवर ट्राइंग टू डू वॉज टू सेव द वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली द US फ्रॉम अ ग्रेट डिप्रेशन काइंड ऑफ अ सिनारियो। एंड ग्रेट डिप्रेशन में हमने देखा बैंक्स कोलैप्स हो जाते हैं, बैंक्स कोलैप्स हो जाते हैं, पैसा आपका साफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाह रहे थे कि वो ट्रस्ट गायब हो जाए मार्केट से, वो सिचुएशन खराब वाली आ जाए, एंड इसीलिए हमने देखा कि इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट अपने ऊपर ले ली है। और अब मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट रिसेशन आएगा ना, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर आई वुड से अ लॉट ऑफ कंट्रीज, फॉर अ लॉट ऑफ इकनॉमीज एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड नेक्स्ट रिसेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। रिसेशन आएगा सोच के काम वाम मत करो, बट रिसेशन आएगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेंडुलम की तरह घूमता रहता है, राइट? तो फिर ये आपको बस माइंड में होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा, मे बी 6 ईयर्स डाउन द लाइन, मे बी 5 ईयर्स डाउन द लाइन, मे बी 8 ईयर्स डाउन द लाइन, मे बी 10 ईयर्स डाउन द लाइन, जब ये जो सिचुएशन थी ना, इकोनॉमिक क्रंच था, ये तो फाइनेंशियल क्राइसिस थी नहीं, राइट? ये तो एक वायरस की वजह से हुआ था, बट फाइनेंशियल क्राइसिस एक आएगी ऐसी जो बहुत बुरी तरह इंपैक्ट करेगी। एंड नाउ सिंस इंडिया इज इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी इन सच अ वे दैट यू विल सी अ वेरी वेरी बिग इंपैक्ट ऑफ इट, और कहीं ना कहीं ये दिक्कतें ट्रांसलेट होंगी। होगा क्या, आप बड़े मस्ती से चलोगे 8-10 साल और आप अपना एक रिजर्व फंड तैयार नहीं करोगे, सेविंग्स तैयार नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट्स अच्छी जगह पे नहीं करोगे, और फिर आप देखोगे कि बिल्कुल आपकी जॉब्स चली गई और बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बिजनेसेस भी हिट लेंगे, सब कुछ हिट लेगा, राइट? आई एम नॉट बीइंग अ पेसिमिस्टिक, मैं बिल्कुल भी पेसिमिस्टिक नहीं हूँ। अगर मैं पेसिमिस्टिक होता तो यूट्यूब चैनल का नाम द बेयर ऑफ द लास्ट स्ट्रीट होता, बुल नहीं होता, राइट? बट आई एम बीइंग वेरी वेरी रियलिस्टिक। नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड स्पेशली इफ इट हैपेंस ड्यू टू चाइना, बहुत बुरा हाल होगा। यश एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि जो अगली क्राइसिस आनी है चाइना की वजह से आएगी, चाइना की वजह से आएगी, चाइना की वजह से ही आई, बट फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, और फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी बट आई चाइना की वजह से। नेक्स्ट भी हमें लग रहा है कि US या चाइना में से ही एक गड़बड़ करेगा। यूरोप की मोस्टली कंट्रीज आर एब्सोल्युटली स्ट्रगलिंग, बिल्कुल खत्म हो चुकी है इकनॉमीज। आई हैड अ लॉट ऑफ कजन्स एंड फ्रेंड्स हु वॉन्टेड टू गो एंड स्टडी इन यूरोप, डू जॉब्स इन यूरोप, आई एब्सोल्युटली डू नॉट अंडरस्टैंड। मोस्टली मुझे लगता है लोग मूवीज वगैरह देखते रहते हैं, यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं कि अरे बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, इकोनॉमीज में जान ही नहीं बची है, मुर्दा इकोनॉमीज हैं, इंजेक्शन मार मार के खड़ा कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। एंड ये चीज़ें आपको फुटबॉल क्लब्स में भी दिख रही हैं, मोस्ट ऑफ द फुटबॉल क्लब ओनरशिप्स आर गोइंग टू लेट्स से UAE, चाइना, रशिया, आप देख रहे हैं यूरोप के जो खुद के क्लब्स हैं उनकी ओनरशिप्स कम होती जा रही हैं, या उनका जो खुद का पैसा होता था वो कम होता जा रहा है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग अलॉट। एंड यू नो फुटबॉल इज़ लाइक अ रिलीजन इन यूरोप, एंड आप समझ सकते हैं जब मैं कहता हूँ कि इन क्लब्स की हालत इतनी बुरी हो रही है कि इनको अपने स्टार प्लेयर्स बेचने पड़ रहे हैं सिर्फ वेजेस चुकाने के लिए, सिर्फ यू नो क्लब को रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। एंड अ लॉट ऑफ देम सोल्ड देयर प्लेयर्स, देयर स्टार प्लेयर्स फॉर फ्री, एंड उनको रीसाइन नहीं कर पाए हैं, ना रीसाइन कर रहे हैं। आपने देखा मेसी के साथ क्या हुआ, रामोस के साथ क्या हुआ, पैसा ही नहीं है, फ्री ट्रांसफ़र पहले इतने नहीं होते थे। तो बहुत बुरी हालत है, ओवरऑल भी बहुत बुरी हालत है, मुझे नहीं लगता कि रिकवरी आनी है, वहाँ के बैंक्स की अभी भी बहुत बुरी हालत है। तो अगेन गाइज, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ सम अप करते हुए यहाँ पे, कि आपको तैयार रहना है अगले रिसेशन के लिए। अब होता क्या है एक बुल मार्केट के अंदर, हमें तो पता है बुल मार्केट लंबी चलेगी, बुल मार्केट के अंदर होता क्या है कि आपने स्टॉक ले लिया, यहाँ वो जाता जा रहा है जाता जा रहा है, आपको लगता है यार दुगना हो गया शेयर, 50% आ गए शेयर में, बेच के निकल लेते हैं, बहुत पैसा आ गया, जेब में जो पैसा आता है वही पैसा होता है, वो बात तो बिल्कुल सच है, बट आप बेच के निकल लेते हो। फिर वो वहाँ पे आपको शायद थोड़ा परेशान करता है, आपको लगता है अरे बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ, मे बी थोड़ा सा नीचे भी चला जाए, फिर जो स्पीड से ऊपर जाता है जूम करते हुए बिल्कुल, तो आपको ऐसा लगता है, धक्का सा लगता है बिल्कुल, कि यार अभी तो मैं तुझे बेचा और तू उसके बाद ऊपर चला गया। बट होता क्या है ना, हमें लगता है हमने बेच दिया तो गिरना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगेन मार्केट ग्रेटर बीइंग है, सबके यू नो एक्शंस की वजह से काम करती है, आपके एक्शन की वजह से खाली काम नहीं करती। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बुल मार्केट के अंदर आपको बस जो थोड़ा ध्यान रखना होता है ना, वो ये रखना होता है कि आपके जो कंपाउंडिंग शेयर्स हैं, जो आपके शेयर्स ऐसे हैं जिनमें अर्निंग्स की ग्रोथ आ रही है और जो शेयर्स के प्राइजेस भी चल रहे हैं, उनको आप होल्ड करो। मैंने बाय एंड होल्ड के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई है, मैं यही कहना चाहूँगा उनको जब तक आप होल्ड करोगे ना, उनको पकड़ के बैठोगे, तो ही आप देखोगे कि रिटर्न्स आपकी बहुत अच्छे से आ रही हैं, बहुत उभर के आ रही हैं रिटर्न्स आपकी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, अगर आप इस पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे कहीं ना कहीं। तो बुल मार्केट के अंदर जैसा मैं पहले भी कह रहा था, अगर आप यहाँ पे यू नो महंगा ले लोगे, सस्ता थोड़ा बेच दिया, लेकिन वो ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी, महंगा लेना यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी ज़रूरी है। अब बात आती है इस पर कि हम किस टाइप के स्टॉक्स पर बैट करें। हर बुल मार्केट के अंदर यू नो सेक्टर्स चेंज होते हैं, लीडर्स चेंज होते हैं, और इसके अंदर आपको दिख रहे हैं लीडर्स के, अगर नहीं दिख रहे टेक्निकल्स पे चार्ट लगाओ सबके, ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, स्टॉक्स के नाम एंटर करो, इंडेक्सेस देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जो चल रहा है उस पर बैट करो थोड़ा, एंड अपना एक पोर्टफोलियो अच्छे से बनाओ, अपनी रिस्क असेसमेंट करो, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करो, अपने विजन समझो इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अगर आप ट्रेडर हो तो उसको समझो और उस बेसिस पे यहाँ पे काम करो। आपके लिए क्या सही है वो आपको पता है, या आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को पता है, अगर आप उनके साथ सारी चीज़ें डिस्क्लोज करते हो, तो आपको फोकस उसी पे करना है कि आपकी रिटर्न्स अच्छी आएँ आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, और वो रिस्क भी आपका ही हो, उसमें प्रॉफिट भी आपका ही है, तो आपके हिसाब से होनी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और यहीं कहीं ना कहीं बिहेवियरल फाइनेंस आपको बहुत हेल्प करती है, अगर आप खुद से चीज़ें करना चाह रहे हैं, बिकॉज आप खुद को समझने लगते हैं, आप अपने माइंड के फ्लॉज समझने लगते हैं, और जब आप ये सब कर लेते हैं तो बुल मार्केट हो बेयर मार्केट हो आपको समझ आ जाता है आपको करना क्या है यहाँ पे। आपको गाइज इतना तो पता ही है जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं कि आई वॉज़ वन ऑफ दी आई वुड से फ्यू यूट्यूबर जो यहाँ पे कहता था कि नहीं भैया बाइंग करो, और मैं खुद बाइंग कर रहा था, और मैं आपको कह रहा था मैं खुद बाइंग कर रहा हूँ, आप भी बाइंग करें। यहाँ पे डेफिनेटली हमारे लेवल्स थे, सब कुछ था, हमें भी था, हो सकता है 7.5 के नीचे चला जाए निफ्टी, राइट, नहीं गया ऊपर आने लगा, तो हमने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नीचे आएगा पैसा जोड़ना है, हम तो डाल के थक गए, तो पैसा ही खत्म हो गया सारा डाल के। तो वही बात है कि यहाँ पे आपको एक फ़र्क दिखता है, ये सारा डिफरेंस लेकिन आप में कैसे आएगा, बात ये है ना। तो देखिए मेरा ये फुल टाइम काम है, अगर आप इसको फुल टाइम और सीरियसली करें जैसे आप किसी और काम को करते हैं, तो ये डिफरेंस आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं मैं पार्ट टाइम करके इतना यू नो इन्वॉल्व हो सकता हूँ मार्केट्स के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अगेन इसके अंदर काम करना चाह रहे हैं, और उसी बेसिस पे यहाँ पे आगे काम करें। और बुल मार्केट के अंदर बस ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे सस्ता अगेन मैं कह रहा हूँ बेच मत देना, वरना आपको यही लगेगा कि खरीदा लो और सेल भी नीचे कर दिया, यार ये तो बहुत ही दिक्कत हो गई, ये तो कितना ऊपर चला गया, आपको बहुत लगेगा ऐसे। और बहुत सारी स्टोरीज होंगी ऐसी जो 10 गुना 15 गुना 20 गुना 100 गुना हो जाएंगी यहाँ पे, और आप सोच रहे होंगे कि यार बेचना नहीं चाहिए था, बेच दिया, गलती हो गई, और आप वापस कभी नहीं खरीद पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक अच्छा लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन बनाने पे ध्यान दें, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने पे ध्यान दें, एंड अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर आप रियलाइज करेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो इनफैक्ट ट्रेडिंग भी है, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं चार्ट्स के बेसिस पे, आपने अच्छी अच्छी कंपनीज खरीद रखी हैं जो भी है, उसकी कंपाउंडिंग आपको दिखेगी अच्छी बहुत ज़्यादा। और वो बुल मार्केट है ना, ये तो आपको समझना ज़रूरी है, फ़ायदा उठा लो इसका। हर समय मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जा रही होती, इस समय बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है और गई है, मतलब अब क्या कर रही है, खड़ी हो रही है नहीं हो रही, वो सब तो हम डिस्कस करते रहते हैं, टेलीग्राम पे अपडेट आते रहते हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे अपडेट आते रहते हैं सारे, वो सब तो होता रहेगा। बट बात यह है कि ये लंबे समय की बुल मार्केट है, राइट, इसकी अभी शुरुआत हुई है, तो इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है। टाइम स्पेंट इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। मुझे पता है मेरे कुछ दोस्त इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करेंगे, बट अगेन बाय एंड होल्ड वर्क्स वंडरफुली फॉर मी। टाटा एलेक्सी जो मेरा 10 गुना हुआ, जेलपोंग जो मेरा इतना बड़ा, बजाज फाइनेंस जो मेरा इतना बड़ा, LTTS, APL अपोलो, इंडिया मार्ट, ये जो सारे स्टॉक्स मेरे इतने बड़े हैं, बाय एंड होल्ड से बड़े, मेरी रोटेशनल बेसिस पे बाइंग करने पे, हर समय चर्न करने पे नहीं बड़े हैं। एंड अगेन माय पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी इज आई कीप ऑन बाइंग, राइट। तो मैं अपने ही तो नहीं, मैं कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ माय इनकम, डेफिनेटली कुछ खर्चे भी होते हैं भैया तो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ माय इनकम आई कीप ऑन पुटिंग बैक इनटू द मार्केट्स, इनटू माय पोर्टफोलियो, एंड दैट इज़ हाउ आई एम ग्रोइंग माय पोर्टफोलियो। तो अगेन डिपेंड करता है, कुछ लोग होंगे जो वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ होंगे जो SIP मोड में जा सकते हैं, कुछ होंगे जो डेली भी कर सकते होंगे, कुछ होंगे जो बिल्कुल कहेंगे कि भैया हमसे तो आप हर घंटा जाए पैसा लगवा लो मार्केट में, इतना पैसा है हमारे पास, आप तो हमें शेयर्स बताओ, इस टाइप के लोग भी होंगे। तो अगेन आपको क्या करना है वो आपको ही पता है, उसी बेसिस पे काम करना है। बट बुल मार्केट है ये, आपको कभी भी यहाँ पे गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार सस्ता बेच दिया, और ये गिल्ट रहेगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ शेयर्स आप बेचेंगे रोटेट करने के लिए कैपिटल को। बट अगेन वही बात है, अगर आपको पता है ना शेयर अच्छा है, पेशेंस दिखाओ, पेशेंस भी, लेकिन वो अगेन आपके स्टॉप लॉसेस टाइम वाइज क्या है वो आपको ही देखने पड़ेंगे, बट पेशेंस दिखाएं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ, दे विल डू वंडरफुली वेल। दिस इज अ बिग बुल मार्केट एंड इस बुल मार्केट को छोड़ मत देना, बहुत ऊपर जाएगा, अभी भी बहुत लोगों को यकीन नहीं है ऊपर जाएगा, मतलब ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, फिर भी लोगों को लगता है कि ये लंबे समय में ऊपर नहीं जाने वाला। अगर आपका होराइजन 3 साल का भी है ना, 5 साल का भी है, आप मेरे ख्याल से तो डालो, मैं तो देखो डाल रहा हूँ, और जिस दिन मुझे कुछ गड़बड़ लगेगी आपको यहाँ पे भी अपडेट करेंगे, टेलीग्राम पे भी अपडेट करेंगे, हर जगह अपडेट करेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। हमारे क्लाइंट जो मनी क्राफ्ट में, उनको भी अपडेट करेंगे, तो सभी को अपडेट करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। बट मेरे हिसाब से बुल मार्केट है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही लोगों को रहती है कि हमने सस्ता बेच दिया, तो उस चीज़ में आप ना पढ़ो। अगर उस चीज़ में आप नहीं पढ़ोगे तो आई थिंक यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल, एंड मे बी यू जस्ट नीड दिस वन बुल मार्केट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो देख लो कैसे करना है, उतने ही पैर पसारना जितनी चादर हो, ये बात याद रखना। लेवरेज मत ले लेना यहाँ पे, क्योंकि ब्याज का जो मीटर होता है ना वो अलग ही आपका खून चूसेगा, तो उसका ध्यान रखना बस थोड़ा, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है। इनफैक्ट आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनसाइट्स बाय द बुल का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इनसाइट्स बाय द बुल पॉडकास्ट फॉर्म में भी जाता है। आप अगर मुझे स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, कहीं पे भी सर्च करेंगे द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट, तो आपको दिख जाएगा, वहाँ पे भी इसके एपिसोड्स हैं, तो आप वहाँ जाके भी सुन सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।